مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام راؤنڈ ٹیبل کے ساتھ میں ہوں سعدیہ اسد۔ میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں اسفر امام۔ ہمارا آج کا موضوع ہے پاکستانی معاشرے میں جنسی طور پر ہراساں کرنے کا مسئلہ۔ ہالی ووڈ کے معروف پروڈیوسر ہاروی وائنسٹین پر خواتین کے ساتھ زیادتی اور انہیں جنسی طور پر ہراساں کرنے کے الزامات کے بعد سوشل میڈیا پر می ٹو نامی ایک بین الاقوامی مہم کا آغاز ہوا، جس کا اثر پاکستان بھی پہنچا اور متعدد نمایاں خواتین نے اپنے ساتھ پیش آنے والے اس قسم کے واقعات کے خلاف زبان کھولنے کی ہمت کی۔ لیکن حال ہی میں پاکستان کی ایک معروف اداکارہ، ٹی وی ہوسٹ، ماڈل، ہدایت کارہ انجلین ملک صاحبہ نے انکار کرو نامی مہم کا آغاز کیا۔ تو می ٹو جیسی عالمی مہم کے ہوتے انہیں اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی، اس پر تفصیل سے بات کریں گے۔ اور مجموعی طور پر پاکستانی معاشرے میں عورت کے لیے یا حتیٰ کہ مرد کے لیے بھی، یعنی صنف سے بالاتر ہو کر، جنسی طور پر ہراساں کرنے کا مسئلہ کتنا بڑا ہے، اس کے حل کے لیے سوسائٹی، قانون اور ماحول کتنا سازگار ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں ہمارے ٹول فری نمبر 0800-777-789 پر۔ آپ سے اپنے مہمانوں کا تعارف کرائے دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ شامل ہیں لیجنڈری اداکارہ، پروڈیوسر اور ہدایت کارہ اسمینہ احمد جی۔ انجلین ملک صاحبہ ہمیں جوائن کریں گی، اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ شامل ہوں گے معروف لائر اور جسٹس ہیلپ لائن کے صدر ندیم شیخ جی اور معروف سائیکالوجسٹ ڈاکٹر مبین اختر صاحب، اور اس کے علاوہ جیو کے اندر موجود ایک انٹرنل انویسٹیگیشن کمیٹی جو ہے، جو اس طرح کے معاملات کو ڈیل کرتی ہے، ان کی ہیڈ عظما الکریم بھی ہمیں جوائن کریں گی، جو یہ بتائیں گی کہ پاکستان میں مختلف آفیسز جو ہیں ان کے اندر موجود اس طرح کے آفیسز کتنے ہیلپ فل ہیں، اور خواتین یا مردوں کے لیے یا جو بھی متاثرہ شخص ہے اس کی کتنی ان کے ذریعے مدد ہوتی ہے اور کتنے کامیاب ہیں۔ تو اپنے مہمانوں کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں انجلین ملک صاحبہ سے، اگرچہ اس سلسلے میں ہماری ان سے اس سے قبل بھی تفصیلی بات چیت ہوئی ہے، لیکن میں چاہوں گی کہ ہمارے وہ سننے والے جو پہلی بار ہمارا شو سن رہے ہیں، ان کی معلومات کے لیے آپ پلیز بتائیے گا کہ انکار کرو کا آغاز کس سوچ کے ساتھ کیا اور اس کی ضرورت آپ کو کیوں محسوس ہوئی؟
مجھے خیر لگا کہ جس طرح کا ہمارے یہاں اس میں کافی کچھ عورتیں فارورڈ آئی ہیں، اینڈ اسپوکن اباؤٹ می ٹو اینڈ ایڈریسنگ اٹ، اینڈ جو ایشو سارے چل رہے ہیں، آئی تھاٹ اٹ واز ٹائم دیٹ وی کائنڈ آف لوگوں کو تھوڑا سا ان کو یہ میسج دیں کہ بیسکلی ان کو ایجوکیٹ کریں کہ اگر ہم میں اسٹرینتھ ہو ٹو سے نو، ٹو اسٹینڈ اپ فار آر سیلز، فار آر رائٹس، اگر ہم جو ایشو ہے اس کو پہلے ٹیکل کر لیں تو ہم اس حد تک پہنچیں گے نہیں ویئر وی بیکم وکٹمز۔ سو آئی تھاٹ دیٹ اینڈ دا کائنڈ آف اسٹوریز آئی واز سینگ اراؤنڈ می، دا کائنڈ آف ویمن ہو آر اپروچنگ می، سو آئی تھاٹ اٹ واز ویری امپورٹنٹ ٹو ایجوکیٹ پیپل آن دس ایشو۔
جی بہت شکریہ انجلین، ہمارے ساتھ ہی رہے گا، ہم اس پر ساتھ ساتھ ڈیٹیل سے بات کرتے جائیں گے کہ کیا اس سے آگے آپ کی سوچ ہے، کہاں تک پہنچی ہیں، کہاں تک آپ جانے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ اسمینہ احمد جی، آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ آپ نے ایک طویل عرصہ انڈسٹری میں گزارا ہے، اور ہماری میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی میں مردوں کے ساتھ کام کرنا کتنا مشکل ہے ایک عورت کے لیے، آپ پلیز پہلے تو ہمیں یہ بتائیے۔
السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کا کہ مجھے آپ نے اپنے پروگرام میں شامل کیا۔ جی، آپ کے سوال کا جواب یہ کہ بہت عرصہ میں نے یقیناً گزارا ہے ایک میل ڈومینیٹڈ انڈسٹری میں، اور میں یہ نہیں کہوں گی کہ بہت آسانی سے ہو گیا، مشکلات ہوتی ہیں، بہت مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ جو سم ہاؤ یہ بھی ایک تاثر ہے کہ جو عورتیں ہیں اور خاص طور پر جو عورتیں ایکٹنگ کرتی ہیں، ان کے شاید دماغ کم ہوتے ہیں اور ان کی صلاحیتیں صرف ایکٹنگ تک ہی محدود ہوتی ہیں، اور سوچنے کی صلاحیت شاید ان کی کم ہوتی ہے۔ ایک یہ میں نے نوٹس کیا تھا کہ یہ بہت بڑا ایک آبسٹیکل ہوتا ہے، ایک بہت بڑی رکاوٹ ہوتی ہے آپ کو آگے کام بڑھانے میں، اور آپ کو بہت زیادہ کام کرنا پڑتا ہے۔ میں نے ایڈمنسٹریٹو کام بھی کیا آرٹس کاؤنسل الحمرا لاہور میں، میں نے 15-20 سال ایز پروگرام ڈائریکٹر کام کیا تھا۔ وہاں پر مجھے یہی دشواریاں زیادہ تر پیش آتی تھیں کہ آپ کو سیریسلی نہیں لیا جاتا، آپ کوئی بھی پروجیکٹ بتاتے ہیں یا کوئی بھی کام کہتے ہیں کہ اس طرح سے ہم کر سکتے ہیں, تو آپ کو یقین دلانے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے, بہت لوگوں کو بتانا پڑتا ہے کہ یہ اس طریقے سے ہوگا, جبکہ آپ کے جو مرد کاؤنٹر پارٹ ہیں ان کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, میں یہ بھی کہوں گی کہ اگر آپ لگے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں تو پھر کام ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور جہاں تک کہ یہ ہے کہ آپ کی کتنا ہراساں کیا جاتا ہے جنسی طور پر, ہماری سوسائٹی میں یہ موجود تو ہے
جی,
کتنا زیادہ ہے کتنا کم ہے ہمارے فیلڈ میں بھی موجود تو ہے, یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہے جیسے باقی جگہ میں ہے. اس طرح سے ہمیں رپورٹ بھی ملتی رہتی ہیں, ہمیں لوگ بچیاں آ کے بتاتی بھی ہیں کہ اس نے فلاں نے کیا. اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جہاں پر خواتین ہوتی ہیں, جہاں ان پوزیشن آف پاور خواتین ہوتی ہیں, وہاں پر انسٹنسز کم ہو جاتے ہیں. جو لڑکے وہاں کام کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی ذرا محتاط رہتے ہیں, جیسے مطلب اینجلین کا جیسے سیٹ ہوتا ہے جب یہ ڈائریکٹ کر رہی ہوتی ہیں, تو وہاں پر لڑکے ذرا زیادہ محتاط ہو کے کام کرتے ہیں کہ باس اینجلین ہیں یا باس اور بھی جو بھی ہیں. جہاں جہاں پر خواتین زیادہ کام کر رہی ہوتی ہیں وہاں پر ذرا محتاط ہوتے ہیں, وہاں ذرا سیفٹی مارجن ذرا زیادہ ہو جاتا ہے.
سمینا جی, آپ کی بات سے مجھے کل میری بات ہوئی سپریم کورٹ کے بار ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ سے کل میری بات ہوئی, لائر وہ آج شامل نہیں ہو سکے کیونکہ وہ عمرے کے لیے جا رہے تھے. تو جب میری اس سلسلے میں ان سے ڈسکشن ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ وہ کئی عشروں سے اس فیلڈ میں ہیں لیکن آج تک ان کے پاس ایک بھی ایسا کیس شکایت میل کسی طرف سے نہیں آئی. تو ہمیشہ جتنی بھی شکایتیں ان کے پاس آج تک پہنچی ہیں وہ سب فیمیلز کی طرف سے ہی ہیں. تو ہمارے معاشرے میں فیمیلز کے ساتھ اکثریت میں یہ ایشو ہوتا ہے. جیسے ابھی آپ نے کہا کہ اگر فیمن جو ہے یا خواتین جو ہیں جب وہ پوزیشن میں ہوتی ہیں تو وہاں لوگ خاص طور پر جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ سیف محسوس کرتی ہیں اور لوگ تھوڑا سا ہوشیار رہتے ہیں ان کو تنگ کرنے میں. تو سمینا جی, سے پہلے کہ میں اینجلین کی طرف جاؤں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی, آپ مجھے یہ بتائیے اپنے سارے ایکسپیرینس کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ عورت کے لیے اب بھی کتنا سازگار ہے ماحول کہ وہ بولے, کتنا انکریج کیا جاتا ہے؟
مجھے میں بہت ایمانداری سے اور سچے دل سے آپ سے یہ کہوں گی کہ مجھے کچھ یوں ایسا محسوس ہونے لگا ہے کہ ماحول میں کیونکہ اوور آل ایک ٹالرنس کی کمی ہو گئی ہے, ایک دوسرے کا لحاظ کم ہو گیا ہے اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی قوت ہماری کم ہوتی چلی جا رہی ہے اور پچھلے 10 سال میں کافی کم ہوئی ہے اور اب بہت زیادہ. تو اس وجہ سے بھی لگتا ہے کہ جو ایک عورت کو یا لڑکی کو ایک معاشرے میں تحفظ ملتا ہے جبکہ برداشت ہی نہیں ہے لوگوں میں, تو اس کا تحفظ بھی کم ہو جاتا ہے. تو آج کل مجھے یوں لگنے لگ گیا ہے کہ آج کل کیونکہ ہم ایک دوسرے کی نہ ہم بات سننے کو تیار ہیں نہ ہم ڈیبیٹ کرنے کو تیار ہیں, ہم صرف اپنا ہی سوچ رہے ہیں, ہم شاید اتنے انسیکیور ہو گئے ہیں کہ ہم صرف اپنا سوچتے ہیں اور دوسرے کے خیالات, دوسرے کے جذبات, دوسرے کے احساسات کی کوئی وقت نہیں رکھ رہے, اور تو اس وجہ سے تحفظ کچھ کم ہو گیا ہے مجھے یوں لگتا.
صحیح. سمینا جی ہمارے ساتھ ہی رہیے گا, بہت شکریہ. اینجلین ملک صاحبہ, آپ کی طرف آؤں گی. آپ نے جو بات کی اس سے پہلے اس میں آپ کا یہ کہنا تھا کہ آپ اس مسئلے کی جڑ کو پکڑنا چاہتی ہیں کہ می ٹو تک بات پہنچے ہی نہ. می ٹو تک تو تب پہنچے گی جب آپ کے ساتھ وہ واقعہ ہو چکا ہوگا اور آپ تب آگے آئیں گی اس کو بیان کرنے کے لیے. جیسا کہ آپ نے اس مہم کے بعد دیکھا کہ عشروں پرانی بھی باتیں لوگوں کو حوصلہ ملا کہنے کا اور وہ آگے آئے, انہوں نے کہیں. لیکن آپ چاہتی ہیں کہ اس سے پہلے ہی والدین اور بچوں کے درمیان موجود گیپ کو ختم کیا جائے.
جی,
تو
جی.
آپ نے کیا
اس میں بیسک
جی بولیے بولیے
جی. اپنا سوال پورا
جی, میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ نے کیا سوچا ہے کہ کس طرح سے آپ اس کو آگے بڑھائیں گی تاکہ یہ صرف ظاہر ہے آپ اپنی انڈسٹری کے لیے تو نہیں, آپ تو پورے پاکستان کے بچوں کے تحفظ کے لیے اس مہم کا آپ نے آغاز کیا ہے اور اویئرنیس کے لیے کیا ہے, تو کیا سوچا ہے آپ نے کس طرح سے اس کو آگے لے کے چلیں گی؟
دیکھیں اس وقت تو ایک بہت ہی میرے خیال سے کہ ہم نے بہت ایک بیبی اسٹیپ لیا ہے.
صحیح.
اینڈ ان شاء اللہ لائک ود سپورٹ, ابھی میں کچھ این جی او سے بات کر رہی ہوں اینڈ موسٹ پروبیبلی آئی ول ورک ود دیم ان کولیبوریشن. اینڈ بیسکلی آئی تھنک کہ سب سے پہلے تو ہمیں اویئرنیس کریٹ کرنا ہے اسکولوں میں एंड सबसे बड़ी बात यह कि जो पेरेंट्स हैं, क्योंकि वही तो गैप है पेरेंट्स और बच्चों में, वो एड्रेस करना है. एंड आई थिंक जो मुझे कमी महसूस लग रही है यहाँ, एक तो स्कूल्स में बच्चों को ये अवेयरनेस नहीं दी जाती. इस सिलसिले में मैं कुछ डॉक्टर्स से बात कर रही हूँ जिनका एनजीओ है, एंड इनके साथ वी प्लान टू काइंड ऑफ स्प्रेड द मैसेज इन स्कूल. एंड ऑब्वियसली क्योंकि सोशल मीडिया इज सच अ स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म नाउ, एंड आई थिंक जो ये सारी सेलिब्रिटीज है, जो सारे लोग मेरे साथ शामिल हुए हैं जिनकी बहुत फॉलोइंग है, इनके थ्रू, बिकॉज जाहिर जो मैसेज मैं जो मैसेज ये लड़कियां दे सकती हैं अपने फॉलोअर्स को, आई थिंक उससे ये मैसेज ज्यादा स्प्रेड हो सकता है बजाय के कोई रैंडम पर्सन हो. सो आई प्लान टू मेक स्मॉल स्मॉल वीडियोज एंड रिलीज ऑन सोशल मीडिया टू क्रिएट अवेयरनेस. एंड उसके साथ साथ आई एम टॉकिंग टू अ फ्यू एनजीओज टू क्रिएट सम काइंड ऑफ बिगर प्लेटफॉर्म.
और स्कूल्स की आपने बात की, वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि वहाँ बच्चे जो कुछ सीखते हैं वो उसको ज़्यादा संजीदगी से लेते हैं.
एग्जैक्टली. और एक और चीज़ जो है, आई थिंक इसको ज़रा फोकस करना चाहिए गवर्नमेंट को एंड स्कूल्स को, कि स्कूलों में थेरेपी होती नहीं है जैसे बाहर के मुल्कों में होती है. क्या आपने बच्चा देखा है ना, बच्चे का कोई प्रॉब्लम है तो उसको एड्रेस करना चाहिए, पेरेंट्स को रीच आउट करना चाहिए, तो वो थेरेपी नहीं है. तो आई थिंक ये चीज़ इस पर हमें ज़रा फोकस करना चाहिए कि सारे स्कूलों में अगर इसको मैंडेटरी कर लें कि एक थेरेपिस्ट हो. कुछ स्कूलों में है जो अफोर्ड कर सकते हैं, बट आई थिंक इसको जरा या तो फिर मंथली बेसिस पे कोई थेरेपिस्ट स्कूलों पे जाए, ऐसी कोई अरेंजमेंट करना चाहिए. आई थिंक दैट इज वेरी समथिंग व्हिच वी शुड फोकस ऑन एज वेल.
और ये कि बच्चों को जैसे समटाइम ये सोचा जाता है ये तो बच्चे हैं इनका क्या, लेकिन बच्चों को एक पूरा इंसान समझते हुए ये देखना चाहिए कि उनके बिहेवियर्स में क्या तब्दीली आ रही है और किस तरह से चीज़ें उनको इफेक्ट कर रही हैं. बिल्कुल समीना जी, आपकी तरफ आऊँगी. आज आपको पता ही ज़ाहिर होगा जैनब कसूर में जैनब के साथ जो वाक़ पेश आया उसकी आज पहली बरसी है. तो आपसे ये जानना चाहूँगी जब इस तरह के केसेस सामने आते हैं तो सोसाइटी पर ये किस तरह से असरअंदाज होते हैं, क्या कोई फ़र्क डालते हैं ये केसेस?
देखिए, फर्क तो यकीनन जो लोगों के ऊपर पड़ता है, दिल तो सबका दुखता है, तकलीफ सबको बहुत होती है, इतनी सेंसिटिविटी तो सब में है
जी.
मगर इधर तक ही हम अगर रह जाएं तो कोई मजा नहीं है, कोई फायदा नहीं है इस सेंसिटिविटी का. हमें आगे कदम बढ़ाना है और इस किस्म के वाकयात की रोकथाम के लिए कुछ करने की जरूरत है.
समीना जी, पेरेंट्स की क्या जिम्मेदारी समझती हैं आप?
देखिए, पेरेंट्स बेचारे क्या करें, जब वो ट्रस्ट जो भी इस तरह के आप देखें वाकयात जो भी हैं, अभी रिसेंटली भी एक ऐसा केस आया, वालिद के दोस्त थे वो
जी,
जो तो पेरेंट्स को बहुत ज्यादा विजिलेंट रहना पड़ता है, बहुत ज्यादा ध्यान रखें कि घर में कौन आ रहा है क्या. भाई आइसोलेट भी तो नहीं कर सकते ना कि आपके बच्चे की कोई किसी के साथ इंटरेक्शन ही ना हो, है ना.
बिल्कुल.
तो इस वजह से ये एक बहुत ही मुश्किल किस्म का काम है जो कि हमें सबने हम सबको करना है कि हम ऐसे लोगों से अपने बच्चों को दूर रखें. कैसे ये हम कर पाएंगे, हमें अपने तौर पर जितना भी हम उनके ऊपर नजर रख सकते हैं, जितने ज्यादा ध्यान दे सकते हैं, जितना ज्यादा देख सकते हैं, मना कर सकते हैं कि किसी स्ट्रेंजर के साथ ना जाओ, अपने जानने वालों के साथ बगैर इजाजत के ना जाओ, वगैरह वगैरह वगैरह, ये तो करना पड़ेगा.
ये करना पड़ेगा. और यहाँ पर मैं एक ज़रूर अपनी ज़ाती मिसाल देना चाहूँगी समीना जी, अपने उन वालदैन के लिए जो हमारा ये शो सुन रहे हैं और उन तमाम लोगों के लिए जहाँ जहाँ ये शो पहुँच रहा है, कि मेरा एक 4 साल का बेटा है तो मैंने उसको शुरू से ही जब उसने समझना शुरू की बातें तो बताया कि हर कोई आपको टच नहीं कर सकता, तो सिर्फ मम्मी बाबा आपको टच कर सकते हैं, अगर कोई टच करे तो आप उसे बताएं कि नहीं और मुझे आके घर में बताएं. तो मेरी फ्रेंड पाकिस्तान से आई, पहली दफ़ा आई थी, तो उसको वो स्ट्रेंजर लगी, तो उसने मुझे के शिकायत की कि वो मुझे टच कर रही थी, यानी वो सिर्फ उसको हग कर रही थी. तो मेरा ख्याल है कि बच्चों को ये कॉन्फिडेंस, एंजेलिन ने बिल्कुल सही कहा कि कॉन्फिडेंस देना चाहिए कि वो माँ से बाप से कुछ भी आके बताएं तो वो उसको एड्रेस करेंगे.
बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त है कि वो माँ से करें, और माँ में भी ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि वो बच्चे को ऐसे खामखा झिड़क ना दे, कि कोई कुछ नहीं होता, झिड़क ना दे.
बिल्कुल.
बच्चे की जो भी कोई बात है उसके तहफ्फुज के लिए उसकी बात को सुनना और उस पर यकीन करना बहुत जरूरी है,
क्योंकि बच्चा पूरी संजीदगी से बात करता है. बिल्कुल.
क्योंकि बच्चे हमें बच्चे झूठ नहीं बोलते.
बिल्कुल और बच्चा समीना जी, दूसरे हमें ये समझने की भी ज़रूरत है, अगर मैं रॉन्ग हूँ तो बताइएगा, कि बच्चा बहुत जल्दी गुड और बैड को हमसे ज़्यादा बाज़ दफ़ा अंडरस्टैंड कर लेता है।
बिल्कुल बिल्कुल, उनको समझ में आ जाती है बात, और सिर्फ उनको डर होता है कि हमें कहीं डांट ना पड़े, हमें कोई झिड़क ना दे, हमारी बात का कोई यकीन ना करे, इस वजह से वो चुप रहते हैं। अगर उनको ये मालूम हो कि खास तौर पर बच्चों को और यंग बच्चियों को भी मैं कहती हूँ कि उनके साथ भी यही होता है कि अगर कोई उनको बैड टच मिलता भी है या कोई ऐसे कुछ या कोई ऐसा रिमार्क भी है, वो आगे बताती नहीं है।
बिल्कुल,
डर जाती हैं
और बर्दाश्त भी कर लेते हैं और बाज़ दफा अंजलि,
हाँ, बिल्कुल, और वो ये और यही समझती हैं कि शायद इसमें हमारी कोई गलती है,
exactly.
हम बताएंगे तो हमें डांट पड़ेगी। जब तक माँ पेरेंट्स में और बच्चों में ये एक आपस का कॉन्फिडेंस नहीं होता तो तब तक बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हम उनको तहफ्फुज़ दे सकें। कॉन्फिडेंस डेवलप करना, बच्चा जो कह रहा है उसको सुनना, उसको सीरियसली सुनना और उसकी बात का यकीन करना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है।
बिल्कुल, मैं बहुत आपको आपके साथ अग्री करूँगी इस बात पे कि बहुत ज़रूरी है, और बच्चा जो कहता है वो बिल्कुल सही कह रहा होता है तो उसको झिड़क के चुप नहीं करवा देना चाहिए, उसको ज़रूर एड्रेस करना चाहिए। ये हमारे वालिदैन की, हम सब वालिदैन की का फ़र्ज़
है। एक बात में और यहाँ पर मुझे ख्याल आता है कि हमने हमारी क्योंकि बहुत ही पैट्रियार्कल सोसाइटी है, हम बहुत ज़्यादा मर्दों को फोकियत देते हैं औरतों के ऊपर, ये भी कुछ थोड़ा सा कम अगर होना शुरू हो जाए तो बहुत बेहतर होगा। क्योंकि जब मर्द कोई ज्यादती करे या गलती करे या कोई ऐसी बात नाजेबा बात करे तो हम उसको नजरअंदाज ना करें।
एग्जैक्टली, क्योंकि तरबियत तो घर ही से होती है। समीना जी बिल्कुल आपने सही कहा कि हमें उसको भी अच्छे और बुरे के बारे में बताने की ज़रूरत है। तो अच्छा एंजेलिन, आपकी तरफ मैं आऊँगी, आपने आगाज़ किया है, आपने इसको बेबी स्टेप कहा है और यहीं से शुरू होती है किसी भी कौम की, किसी भी जो नस्ल एक परवान चढ़ती है उसकी तरबियत। सिर्फ आपसे ये जानना चाहूँगी और समीना जी आप भी मुझे इसका बाद में जवाब दीजिएगा कि इस तरह की जो कोशिशें हैं वालदैन और बच्चों के दरमियान गैप को कम करना, स्कूलों में सिलेबस में कुछ ऐसी चीज़ डालना, बच्चों को स्कूल में भी ये कॉन्फिडेंस देना कि आप हमसे बात कर सकते हैं, ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है, तो क्या इससे अगली नस्ल तक आप देखती हैं कि असरअंदाज होगी ये सारी चीज़ें और हो सकती हैं?
जी, मेरे ख्याल से हाँ। आई थिंक ऑब्वियसली इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस बिकॉज देखें बिहेवियर चेंज करना, ऑब्वियसली वी गोना स्टार्ट फ्रॉम आजकल के जो हमारे बच्चे हैं, सो होपफुली अगर उन्हीं से हम स्टार्ट करें तो जब वो बड़े होंगे तो फिर देन इवेंचुअली ऑब्वियसली देन दे विल टीच द सेम टू देयर चिल्ड्रन। सो ऑब्वियसली इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस एंड बट देन इट्स बेस्ट टू स्टार्ट नाउ देन लेटर। एंड आई थिंक जो हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो आज के बच्चे हैं,
इसके असर को हम तरबियत दे दें
तो देन दे कैन ऑब्वियसली दे वुड टीच देयर चिल्ड्रन द सेम टीचिंग दे वुड गिवन और द सेम कंडीशनिंग।
सही, समीना जी आप ऐड कीजिएगा इसमें।
जी, जो एंजेलिन कह रही हैं कि इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, और अभी जो इनकार करो कि मूवमेंट जो हम जो भी छोटा सा एक स्टेप लिया है हम सब लोगों ने मिलके, वो यही है कि अवेयरनेस फैलाई जाए जितना ज्यादा हम बता सकते हैं जितना ज्यादा। अब इसको हम गेज भी नहीं, कुछ लोग हमें ये भी कहते हैं कि क्या फायदा होगा इसका, आपको क्या पता कि कहाँ तक ये आपकी आवाज पहुंच रही है कहाँ तक नहीं पहुंच रही।
वाकई
सच है कि हमें नहीं पता, क्योंकि मगर हम उम्मीद रखते हैं कि अगर हम 100 लोगों तक पहुंचते हैं तो उसमें से 40-50 लोग तो हमारी आवाज को सुन के और उससे मुतासर होके कुछ अपने लिए बेहतरी कर सकेंगे।
और ये भी आप और ये भी आपने अपने हिस्सा
डाल दिया है। हमारी कोशिश यही है कि हम ये मैसेज, ये कॉन्फिडेंस, ये बात के किसी को भी हरासा करना, उसकी मर्जी के खिलाफ उसको टच करना या उससे इस तरह की बात करना, ये एक गलत बात है और ये नहीं होनी चाहिए, और बच्चों का तहफ्फुज़ लाजमी है हम सब पर। तो हमारी कोशिश तो यही है। फिर ये कि कुछ बच्चियां इस तरह से अगर किसी प्रॉब्लम में हैं और वो हमें रुजू करें या हमसे रابطہ करें कि हम क्या करें, तो हम उनको ये भी बता सकें कि कहाँ क्या लॉज हैं और क्या कुछ वो अपने तहफ्फुज़ के लिए कर सकती हैं, कौन उनकी मदद कर सकता है वगैरह। ये अभी हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं कि किस तरीके से हम इसको और आगे
लेके जा सकते हैं। एग्जैक्टली, बहुत शुक्रिया आप दोनों हमारे साथ कुछ देर। समीना जी अगर आप रुक सकती हैं तो काइंडली कुछ देर और रुक जाइए, मुझे पता है आप किसी डिनर पर इनवाइटेड हैं, तो
नहीं, मैं डिनर पर नहीं, मैं एक्चुअली मैं एक शूट पर हूँ और
अच्छा।
मैंने उनसे आधा घंटा की इजाज़त।
ठीक है, थोड़ी देर के लिए आप हमारे साथ
बात कर लेने दें, फिर मैं वापस सीन करवा लूँ।
ठीक है, बहुत थोड़ी देर, 5 मिनट आप हमारे साथ और रुक जाइएगा। आपने लीगल उस पर बात की, तो नदीम शेख जी हमारे साथ हैं इस वक्त, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। नदीम शेख जी, मैं देख रही थी कि हेरासमेंट का जो एक्ट है वो पहले से मौजूद था, लेकिन डिफाइन नहीं था कि क्या क्या चीज़ें इसके ज़ुमरे में आती हैं। तो गुज़श्ता बरस इसको डिफ़ाइन किया गया, तो आप बताइए कि क्या असर हुआ, क्या लोगों तक पहुंची है, लोगों को पता है, उन मुतासरीन को पता है कि कौन सा दरवाज़ा खटखटाएं, क्या प्रोसीजर है, अमल क्या है, कैसे जाएं, कुछ इसके बारे में भी है या सिर्फ एक्ट बदल दिया गया है, उसकी अवेयरनेस के बारे में भी कुछ है मौजूद?
देखिए जी, बहुत अच्छा आपने सवाल किया और आपने सवाल के साथ जो जवाब आपने खुद ही दिया कि पाकिस्तान में कानून तो बहुत सारे बनाए जाते हैं, एक्ट भी बनाए जाते हैं, और बड़ी आपको जानकर खुशगवार भी होगी पाकिस्तान में हरासमेंट के हवाले से एक बाकी मोटिव का इतना काम कर रहा है
जी।
और मोहतरमा कश्माला तारिक उस पेयर पर्सन है, उस पर आए। इसी तरह सुबह असेंबली में भी सिंध हाई कोर्ट के एक बड़े जबरदस्त किस्म जज रहे हैं जस्टिस शाहनवाज साहब, उनकी सरबराही में वुमेन हरासमेंट का एक पूरा कमीशन कायम किया गया है। लेकिन जहाँ आपने सवाल किया वहाँ आपने खुद ही उसका जवाब देते हुए कहा, पब्लिक में भी उसकी अवेयरनेस का सिलसिला मेरे जाती तजर्बे में जो मेरा मुशाहिदा है, 10 से 12% लोगों को भी नहीं अभी पता कि ये वुमेन कमीशन कायम है, इसमें आप हरासमेंट कंप्लेंट
एग्जैक्टली जी।
और ये भी इतनी खुशाइन बात है कि सिंध में हर सतह पे वुमेन स्टेशन बनाए जा रहे हैं, हरासा की जो कंप्लेंट्स हैं उसके हवाले से बहुत अच्छा रूल रेगुलेशन बन चुका है। लेकिन इसमें अगर हम मजीद काम कर रहे हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ मिलके और इदारों के साथ मिलके बार एसोसिएशन के साथ मिलके, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा काम हो जाएगा और ख्वातीन को बड़ी आज़ादी होगी और वो अपनी इजाज़त का इजहार कर सकेंगी।
आप हमारे साथ ही रहिए नदीम जी, स्मीना जी को जाना है, मैं पहले उनसे यही बात पूछना चाहूंगी। अभी आपने नदीम शेख साहब की भी बात सुनी कि क्या क्या कुछ किया जा रहा है, मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहूंगी, आपका वास्ता बहुत तरह के लोगों से, बहुत तरह की ख्वातीन से भी पड़ता होगा, तो उनको डिस्करेज किया जाता है कि आप खामोश रहें, काम नहीं करने दिया जाएगा, या फिर आसपास बदनामी होगी, या फिर उसकी क्रेडिबिलिटी जो है उसको ख़त्म करने की, डैमेज करने की कोशिश की जाती है, तो आपके ख्याल में ख्वातीन को वाकई ऐसे वक्त में क्या करना चाहिए?
किस हवाले से आप बात कर रहे हैं
कि बोलने, स्पीक अप
पर, वो
कि
जैसे काम करती हैं वहां पर
कि वो बोलें, क्योंकि उनको डिस्करेज किया जाता है, और फिर बाज़ दफा जब आप खामोश रहते हैं तो आप अपने ही जिसने आपके साथ ज्यादती की है उसको मजबूत कर रहे होते हैं, तो और वो आपको फिर आपकी क्रेडिबिलिटी जो है उसको ख़त्म करने की कोशिश करता है कि कोई आपकी बात का यकीन ही ना करे, बस इसी खौफ से अपने घर वालों, सोसाइटी, आसपास, मोहल्ले, साथी, कलीग्स के
जी,
तो वो खामोश हो जाते हैं।
ये तो मैंने पहले भी आपसे कहा था कि क्या था कि ये तो है हमारे यहाँ कि हम बच्चियों की आवाज़ या ख़वातीन की आवाज़ जो है उसको हम दबा देते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, बहुत ज्यादा मर्दों का यहाँ पर अमल दखल तो नहीं मैं कहूँगी उनकी बात ज्यादा सुनी जाती है इस वजह से। तो हमें एक तरफ तो जहाँ हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ मिले, साथ साथ हमें ये भी करना है कि जो इतनी ज्यादा मेल डोमिनेशन है
जी जी।
उसको भी हम कम करें, यानी मर्दों को भी ये सिखाने की जरूरत है कि हम ख्वातीन और मर्द दोनों बराबर के लोग हैं, उनको भी उतना ही हक है जीने का जितना के मर्दों को है, ये नहीं है कि एक पल्ला भारी है और एक पल्ला
हल्का है,
कम भारी
जी,
है।
लास्ट क्वेश्चन मीना जी आपसे करूंगी कि अभी जैसे नदीम साहब ने कहा कि इदारे मौजूद हैं, तो आप अब चूंकि इस पे आपने एक्ट का भी मेरे साथ बात करते हुए जिक्र किया था कि ये जो एक्ट मौजूद है इससे भी कुछ फर्क पड़ेगा, तो इन इदारों के साथ भी कोई कोलैबोरेशन या किसी तरह से आप लोग करके आगे बढ़ने का सोच रहे हैं एंजेलिन मलिक साहब?
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारा मौकफ तो ये है कि हम सब मिलके काम करें,
मिलके अवेयरनेस,
हमने अपना दो लोग अलहदा खड़े हो गए आवाज लगाने के लिए, दो लोग अलग खड़े हो गए, नहीं, जो इदारे हैं, हुकूमती इदारे हैं, एनजीओज हैं, जो कोई भी तहफ्फुज के लिए या अवेयरनेस के लिए काम कर रहा है, हम उनके साथ खड़े हैं, हम उनकी मदद करेंगे। और हम कोशिश ये करेंगे कि हमारा हम जो कह रहे हैं वो उनके साथ मिल के कहें।
बेहद शुक्रिया अस्मीना जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपने अपने सारे जो काम आप कर रहे हैं ख्वातीन के लिए या अपने ख्यालात से हमें आगाह किया, हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। आपसे फिर भी कभी बात होगी, हमारी तरफ से खुदा हाफिज़। और इससे पहले कि हम अपने बाकी मेहमानों की तरफ लौटें, एक आईडी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आएंगे और एंजेलिन मलिक साहिबा और नदीम शेख साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। VOA उर्दू अब आपके हाथ में, पढ़िए, देखिए, सुनिए, सेव कीजिए, फॉलो कीजिए, दूर जाने की जरूरत नहीं। VOA उर्दू की अहम तरीन खबरें और ब्रेकिंग न्यूज की लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस अब आपकी हथेली में हैं। आईफोन के लिए खसूसी तौर पर तैयार की गई उर्दू VOA की खसूसी ऐप डाउनलोड कीजिए, जो ऐप स्टोर पर भी दस्तियाब है। VOA उर्दू अब आपके हाथ में। वेलकम बैक, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से आप प्रोग्राम सुन रहे हैं राउंड टेबल, और हमारा आज का मौजू है पाकिस्तानी मुआशरे में जिंसी तौर पर हिरासा करने का मसला। मैं हूं आपकी मेज़बान सादिया असद और मेरे साथ प्रोड्यूसर हैं असफर इमाम। हमारे साथ मौजूद हैं एंजेलिन मलिक साहिबा और नदीम शेख साहब। एंजेलिन, आपकी तरफ आऊँगी। मैंने देखा आपकी जितनी भी आपने छोटे छोटे मैसेजेज़ और वीडियोज़ डाली वो भी मेरी नज़र से गुजरी कि बहुत सारे नुमायाँ ख़वातीन जो हैं उन्होंने आपका साथ दिया है, तो ये रास्ता आप क्या सोच रही हैं, कितना आसान है और कितनी मुखालफत आपको सहनी पड़ी अभी जो जितना सफर आपका गुजरा?
अच्छा जी, देखिए, एक तो जो बेसिकली जो मैंने प्रॉब्लम फेस किए हैं, पहली बात ये कि एक अनफॉर्चुनेटली जो मी टू का परसेप्शन है पाकिस्तान में वो बहुत बुरा समझा जाता है। अगर एक औरत बोलती है तो यहाँ काफी लोग शोर मचाते हैं कि आया कि ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ, पहले क्यों नहीं बोला, अब क्यों बोल रही है, ये सारे इसके साथ इश्यूज अटैच्ड है
जी।
तो जब मैंने इनकार करो शुरू किया तो ऑब्वियसली वो लोगों ने मीटू का इसके साथ एसोसिएशन कर दी, जबकि ये मीटू नहीं है। मैं मीटू को सपोर्ट करती हूँ मगर ये मीटू नहीं है। ये बेसिकली ऑब्वियसली जैसे मैं कह रही हूँ, ये मैं बात कर रही हूँ कंडीशनिंग की, माइंड सेट चेंज करने की। तो ये लोगों ने काफी क्रिटिसाइज किया। दूसरी बात ये कि मैसेज जो है मेरे साथ बहुत सिंपल था मगर काफी लोगों ने इनकार करो को देखकर आज कि औरत आदमी को इनकार करे, जैसे कि मगर वो बात नहीं है, मैं नहीं कह रही, आप जा रहे हो, ऑब्वियसली आप एक बेटी है, आप एक बहन है, आपका शौहर है, इनकार करो उस सबसे जो गलत है, जो आपको सही ना लगे। सो उस सेंस में लोगों ने काफी इसको क्रिटिसाइज किया है, मुझे काफी क्रिटिसाइज किया है।
सही।
एंड ये भी बोला है कि हम लेकिन जब भी आप सोसाइटी को चेंज करने जाते हैं तो ऑब्वियसली मुखालफत तो होगी
जी,
वो तो अपोजिशन होगी, बिकॉज एवरीवन इज वेरी ऑल आर वेरी सेट इन आवर वेज, और हम चेंज चाहते नहीं है मगर कुछ चेंज बहुत जरूरी है और ये उनमें से एक चेंज है। तो मुझे काफी मैसेज से आदमियों से अपोजिशन आई है एंड काफी अब आई डोंट नो उसके जवाब में इसी तरह का एक और भी सोशल वीडियो मैसेज बनाया है किसी ने, जो बिल्कुल सब जितने कॉपी है वो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, वो आदमियों की आवाज है, बल्कि लोग ये समझी नहीं है, ये सिर्फ औरतों की आवाज नहीं है। मैंने इस वीडियो में सिर्फ औरतें इसलिए रखी है क्योंकि विक्टिम जो है वो नॉर्मली औरत होती है, क्योंकि औरत इस माशरे में ज्यादा कमजोर है, मगर विक्टिम तो मर्द भी है। विक्टिम लाइक यू नो दिस इज नॉट ओनली लिमिटेड, इनकार करो इज नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू वुमेन, इट्स अबाउट ह्यूमैनिटी। तो ये काफी लोग समझे नहीं है, तो वो मैं परसेप्शन भी चेंज करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं तो कहती हूँ अगर औरतों के साथ जाती है होती है तो मर्दों के साथ भी होती है बेसिकली। तो ये सारा जो एजुकेशन एजुकेट सबको करना है, औरत को भी, मर्द को भी, हर किसी को। तो इस सिलसिले में ऑब्वियसली मेरा भी आगे भी प्लान है कि मैं कुछ और सोशल मीडिया मैसेजेस निकालूं।
सही।
एंड आई थिंक इसको थोड़ा सा मुझे क्लैरिफाई भी करना है लोगों को कि इनकार करो उस सब से जो आपके दीन, आपके जो आपने जो आपके
अखलाकियात
अनकंफर्टेबल लगे चीज या जो ठीक ना लगे।
सही। तो ये उससे है जी, बिल्कुल एग्जैक्टली हम अपने सुनने वालों से हमने पहले भी बताया कि پاکستان میں جو انجلین ملک صاحبہ نے ایک مہم کا آغاز کیا میٹو کے بعد انکار کرو, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روٹ کاز سے ہی اس جو برائی ہے اس کو ختم کیا جائے. آپ اپنے والدین کے ساتھ بات کر سکیں, آپ اپنے اساتذہ کے ساتھ بات کر سکیں, آپ کے اندر سے وہ خوف دور کر دیا جائے کہ آپ کہیں گے تو آپ کو برا سمجھا جائے گا, تو اس گیپ کو کم کیا جائے, خوف کو دور کیا جائے اور کانفیڈینس دیا جائے اپنے بچوں کو کہ وہ آپ سے آ کے کہہ پائیں, کچھ بھی کہہ پائیں. تو اس وقت ہمیں ڈاکٹر مبین اختر صاحب نے جوائن کیا ہے. ڈاکٹر صاحب, کچھ دیر پہلے ہماری جب انجلین صاحبہ سے بات ہو رہی تھی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اسکولوں میں تھراپسٹ بھی ہونے چاہئیں کہ اگر ہمارے بچوں کے ساتھ کوئی ایشو ہے کسی بھی طرح کا تو اس کو بھی نارمل باقی بیماریوں کی طرح اس کو بھی ٹریٹ اسی طرح سے کرنا چاہیے اور ان سے پوچھنا چاہیے کہ ان کے ساتھ ایشو کیا ہے. آپ بتائیے کہ بچوں کے بیہیویئر میں کس طرح کی تبدیلی آئے تو والدین کو, اساتذہ کو, آس پاس کے لوگوں کو تھوڑا چوکنا ہونا چاہیے.
تبدیلی ایک تو یہی بات ہے کہ والدین کو خاص طور پہ بچوں کے ساتھ بے تکلف ہونا چاہیے, ان کے جو مسائل ہیں ان کو سننے کی کوشش کرنی چاہیے, بچپن سے ہی ان کے ساتھ اس طرح کی بات کرنی چاہیے ان کے مسائل ہیں, اور تاکہ بڑے ہونے تک وہ ان کو ان سے ہر قسم کی بات کر سکیں. بات یہ بات صحیح کہ اگر کوئی غیر معمولی حرکت دیکھیں, ساری رات جاگتے رہیں اور دن میں سوتے رہیں مثلاً, یا ٹیلیفون میں اور اس میں انٹرنیٹ میں زیادہ وقت گزاریں, تو اس کی پر فکر مند ہونا چاہیے ان کو.
صحیح, تو یعنی ان تمام جو وجوہات ہیں یا یہ تمام علامات جو ہیں ان پہ والدین کو بھی اپنی ذمہ داری پوری کرنے کی ضرورت ہے. ندیم ملک صاحب, آپ کی طرف آؤں گی, آپ سے بات اس سلسلے میں یہ کرنا چاہوں گی کہ یہاں پر تو یہ قانون ہے کہ اتنے سال تک بچہ ان اٹینڈڈ نہ گھر میں رہ سکتا ہے, نہ وہ مارکیٹ جا سکتا ہے, نہ وہ گھر سے باہر اکیلا نکل سکتا ہے, اس کی پوچھ گچھ اس کے والدین سے ہوگی. اور بعض کیسز میں تو یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ایسا کیا, اتنی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا, تو پولیس آپ کو اس کا ذمہ دار ٹھہرائے گی اور آپ کو واقعی اس کے کانسیکوینسز جو ہیں ان کو بھگتنا ہوگا. تو کیا پاکستان میں ایسا کوئی قانون یا ایسا کوئی ایکٹ موجود نہیں ہے جو بچوں کو اس طرح کی سیفٹی دیتا ہو یا کنسرن شو کرتا ہو کم از کم؟
یہاں پر چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ تو موجود ہے
جی,
لیکن ابھی لوگوں میں اتنی پیچیدہ سچویشن چل رہی ہے, تو یہاں پر ابھی یہ سسٹم ابھی آتے آتے بہت بڑی مدت چاہیے یہاں پر آنے کے لیے. دوسری بات یہ جس نظام بات کر رہے ہیں, بڑا سیولائز سسٹم سے آپ لوگ رہ رہے ہیں وہاں پر, لیکن پاکستان میں یہ بنیادی چیزوں کی, یہاں تو بنیادی سہولتوں سے لوگ اتنے محروم ہیں, تو بچے کیسے جا سکتے ہیں, بچے کیسے یہاں تو مار پیٹ اور تشدد کے واقعات تو آپ سب عام پڑھتے ہوں گے, بلکہ اب تو بچوں کا اور خاص طور پہ لڑکیوں کا مشکل سے بچیاں نکلتی ہیں, بڑی ہمت کر کے بچیاں نکلتی ہیں, لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ ایسا معاشرہ سیٹ ہو رہا ہے, بچے سیٹ ہو رہے ہیں, معاملات آگے بڑھ رہے ہیں پاکستان کی راہ پہ, تو اس طرح کی چیزوں کی بھی سپورٹ کرنی چاہیے, بچوں کو حوصلہ دینا چاہیے کہ نہیں بیٹا آپ لوگ جائیں ہمت کریں. اس میں سب سے بڑا کردار اساتذہ کرام کا ہے اور کردار ہمارے کا فیملی, لیکن پاکستان کا میڈیا, پاکستان کے لوگ ڈرامے تو بڑے اچھے اچھے بنا رہے ہیں, چیزیں تو بڑی اچھی کر رہے ہیں, لیکن ابھی تک اس ٹائپ کی اویئرنیس ہم تو اس کی کے ذریعے خاص طور پہ گلی محلوں میں جو ایک نئی وبا پھیل رہی ہے اسٹریٹ چلڈرنس کی, خاص طور پہ نارکوٹکس کے جو آپ واقعہ سن رہے ہو, خاص جیسا ایک بہت اس کے وزارت داخلہ نے یہاں تک کہہ دیا
بہت بڑھ گیا, یہاں
کے بچے 70-80% بچے نشے میں اور دیگر محلکات میں ملوث رہے ہیں, تو اچھے معاشرے مشکل ہے سروائیو کرنا, بڑی ہمت ہے ہم لوگوں کی ماں باپ کی اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں اسکول کالجز, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ قوانین سے زیادہ ہمیں اپنے کا احساس ہوگا ہر شخص کے اندر, جیسے آپ کا ایک ٹاپک ہے وائس آف امریکہ نے کوشش کی ہے, اس طرح پاکستان میں بھی ایف ایم اور دیگر ٹی وی چینلز کو بھی اس طرح کے کر کے اویئرنیس چاہیے, بڑا ٹاپک یہ چند منٹوں میں اور چند لفظوں سے ہی نہیں ہوگا, اس کے لیے بہت بڑی ایک پوری سائنس ہے جس کے تحت ہم اس بچوں کو साइंटिफिक तरीके से मोटिवेट करें।
बिल्कुल, और बड़े मुख्तलिफ इदारों की कोऑर्डिनेटेड कोशिशें जो हैं वो इसके लिए दरकार हैं, इसीलिए हमने मुख्तलिफ तरह की आप कह लें कि शोबों से लोगों को इस शो में इन्वाइट किया है। एंजेलिन मलिक साहब, अभी आपने सुनी नदीम साहब की बात भी, तो मैं चाहूँगी कि आप भी इसमें कुछ ऐड करें कि आपका क्या एक्सपीरियंस है, आप तो अब एक्टिवली इस बारे में कोशिशें कर रही हैं।
आप मुझसे पूछ रही हैं?
जी 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 बिल्कुल।
हेलो जी जी, हाँ इससे मैं ये बोलूंगी कि हमारे मुल्क में इतनी घुड़पट है एंड चाइल्ड लेबर है
जी,
तो चाइल्ड लेबर का भी एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि घुड़पट की वजह से फैमिली जो है बच्चों से काम करवाते हैं। अब जाहिर है वो बच्चे जब काम करने जाते हैं इतनी छोटी उम्र में, तो वो तो फिर अकेला ही जाएगा, अकेला ही आएगा। तो एक तो चाइल्ड लेबर भी खत्म करना चाहिए, उसको भी कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, मेजर इशू है। अभी आई थिंक कोई लॉ निकला है कि सर्टेन एज से नीचे बच्चा काम नहीं कर सकता, मगर ऑब्वियसली अगर एजुकेशन सबको फ्री मिले तो फिर बच्चा बजाय काम करने के वो स्कूल जाएगा, एंड ऑब्वियसली एट अ सर्टेन एज द चाइल्ड कैन मेक समथिंग ऑफ देयर लाइफ। और फिर दूसरा भी एक सैडली प्रॉब्लम भी है, बिकॉज इतनी गुर्बत है तो ये पेरेंट्स जो है जब वो पूरा पूरा दिन काम करते हैं, सो दे कांट कंपनी देयर चिल्ड्रन व्हेन दे गो टू स्कूल और कम बैक फ्रॉम स्कूल।
एग्जैक्टली,
तो ये चाइल्ड प्रोटेक्शन प्लान ग्रेट, बट देन इसको किस तरह इम्प्लीमेंट करना है, इसको आगे कैसे एग्जीक्यूट करना है, इन बच्चों को कैसे प्रोटेक्ट करना है, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है, बिकॉज द फैमिलीज दे हैव नो चॉइस एट टाइम्स।
एग्जैक्टली, क्योंकि हर मसला किसी ना किसी और मसले से जुड़ा हुआ होता है। बिल्कुल आपने बजा फरमाया, बिल्कुल। एंजेलिन हमारे साथ ही रहिएगा, अभी और भी मैं इस सिलसिले में आपसे बात करना चाहूंगी। डॉक्टर साहब की तरफ जाते हैं, उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि जब इस तरह के केस सामने, कोई कॉल हमारे गेस्ट में से कोई हमारे साथ शायद इस वक्त मौजूद नहीं है, डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं इस वक्त लाइन पर मौजूद जी। तो डॉक्टर साहब, आपने देखा एबटाबाद में देखा और उस तरफ, और फिर जैनब के केस की, जैसे आज बरसी है जैनब की पहली, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि ये किस किस्म की जहनी कैफियत होती है जब कोई भी शख्स इतना बड़ा कदम उठाता है, इतना संगीन किस्म का जुर्म करता है, ज़हनी कैफियत क्या होती है, क्या उसके पीछे उसकी साइकी है?
मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर एक ज़हनी बीमारी है, जो बजाय बड़ों के छोटे बच्चों की तरफ एक मरीज को मुतवज्जा करती है, और मैं समझता हूँ उसके नतीजे में ये सारी कैफियत पैदा होती है
जी। एंजेलिन आप हमारे साथ हैं जी? एंजेलिन आप मुझे ये बताइए कि आपने कोई ऐसा लाया अमल बनाया है, क्योंकि इससे पहले समीना जी भी ये बात कर रही थी कि ज़्यादातर जो आप बच्चे के साथ कांटेक्ट में होते हैं वो क्लोज फैमिली मेंबर्स होते हैं, तो कोई ऐसा लाया अमल जो आप सोच रही हैं कि हम ये आगे लेकर चलेंगे और इस तरह से अवेयर करेंगे कि माँ बाप जो हैं उनको आइडिया हो कि वो बच्चे को क्या क्या खतरात दरपेश हैं और किस तरह से वो अपने बच्चे को उससे बचा सकते हैं, कुछ ऐसा आपने कोई गाइडलाइन सोची है?
घर में नौकरों के पास भी इनको फ्रीली नहीं जाने देते, बाहर भी जाएं बच्चे और औरतें दोनों, हम कोई ना कोई इनके साथ मैडम को भेजते हैं, तो यही अगर इसमें थोड़ी बहुत गफलत अगर कभी हो जाती है तो फिर ये खराब नतीजे उसके होते हैं
जी। आप डॉक्टर साहब हमारे साथ ही रहिए जी। एंजेलिन आप कुछ कह रही थी
जी? इसके लिए आई थिंक बेसिकली अब देखिए ये ऑब्वियसली कि हर सोसाइटी में है, हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ ये मिडिल क्लास या लोअर क्लास में या गरीबों में है, ये बहुत कॉमन चीज है ऑल अराउंड अस, एंड आई थिंक ऑब्वियसली उसके लिए हमें पेरेंट्स को एजुकेट करना है। अब देखें जो हमारी मिडिल क्लास है और अपर क्लास है वो तो ऑब्वियसली इनको अवेयरनेस, बिकॉज दे सबके पास टेलीविजन है, मीडिया इज समथिंग जो हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, हम लोगों को सिखा सकते हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली as such and I think the best way to communicate the message by children programming jo ki hamare paas nahi hai, mere khayal se ki pemra ko ek law bhi pass karna chahiye ki every channel should have 1 hour of children programming, jaise pehle PTV ka ek hissa tha, PTV ne ek rule banaya tha ki 6 to 7 होगा बच्चों के प्रोग्राम, उसके थ्रू हम थ्रू मीडिया, थ्रू कार्टून, थ्रू चिल्ड्रन की कहानियां हम बच्चों को एजुकेट कर सकते हैं. अब ये हम बात करें एक सर्टन क्लास की, एंड मैं अगर कैमरा तक मेरी आवाज पहुंचे तो मैं उनको ये बोलूंगी कि इसको जरा एक एक लॉब बना लें. दूसरा मैं समझती हूँ जो जिस कॉम के पास टेलीविजन का एक्सेस नहीं है, आई थिंक उनके लिए वर्कशॉप करना चाहिए जा जाके जगह जगह.
Exactly.
आपको फंडिंग चाहिए, अगर एनजीओ वगैरह मिलके एक 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 ये वर्कशॉप बनाए एंड इनको लोगों को बैठा के इनको सिखाए जा जाके. अब उसके लिए ये भी है क्योंकि मैंने अभी एक सीरियल किया था फॉर जॉन्स हॉपकिंस, दैट वाज ऑन चाइल्ड मैरिज. उसका हमारा प्लान यही था, अभी उसको हमने अभी इंप्लीमेंट नहीं किया कि उसकी डीवीडीज बना के इसको जगह जगह गाँव में जाके यू प्ले देम एंड लेट द मैसेज वॉच द वीडियो. सो आई थिंक ये छोटी छोटी स्टेप्स हैं इनको इन तक रीच आउट करने के, बिकॉज एवरी वन इज नॉट ऑन इंटरनेट, एवरी वन इज नॉट ऑन सोशल मीडिया, क्लास नहीं है.
और खासतौर पर वल्नरेबल, जी वल्नरेबल जो बच्चे हैं
करना पड़ेगा.
जी बिल्कुल, और उनको तो शायद फिर भी कुछ ना कुछ खबर
हो. थिएटर शोज जाके आप गांव में करें, क्योंकि एंटरटेनमेंट के थ्रू जो है ना आप शुगर कोट करके आप एक मैसेज बड़ी सक्सेसफुली दे सकते हैं.
एग्जैक्टली. तो एंजेलिन आप हमारे साथ ही रहेगा, हम मज़ीद इस पर चाहेंगे कि आप हमारे साथ बात करें. हमें उज़्मा अलकरीम ने ज्वाइन किया है जियो में एक इंटरनल जो इन्वेस्टिगेशन की कमेटी होती है, बल्कि मैंने देखा है कि सर्वेज़ मुख्तलिफ सर्वेज़ में पढ़ रही थी कि इंटरनल कमेटियाँ ऐसी मौजूद हैं जो इस तरह के वर्क प्लेस पर हरेसमेंट के इशूज़ को हैंडल करती हैं. तो हमने उज़्मा को आज दावत दी है, वो बताएँ कि वो एक बड़े इदारे की इस तरह की इंटरनल कमेटी जो है उसको हेड करती हैं, उनके नोटिस में केसेस आते हैं. तो उज़्मा आपको शो में वेलकम करते हैं. आप ये बताइए कि कितनी अफेक्टिव हैं इस तरह की इंटरनल कमेटियां, क्या वाकई इससे कुछ फ़ायदा होता है फीमेल्स को या इवन मेल्स को भी, जिनको इस तरह के मसाइल हैं उनको हल किया जाता है, एड्रेस कितना किया जाता है?
थैंक यू सो मच. सबको अस्सलाम वालेकुम सुनने वालों को. देखिए इंटरनल कमेटीज तो अब बाय लॉ मैंडेटरी हैं. 2010 में जो कानून पास हुआ है उसके मुताबिक हर इदारे के अंदर एक ऐसी प्रिवेंशन ऑफ हैरेसमेंट कमेटी होना लाजिम है जिसमें कम से कम 3 लोग हों, एक खातून होना जरूरी है.
सही.
मगर यस हमारे यहाँ अभी भी ये मसला है कि बहुत से लोग तो इस बात को एक मसला ही नहीं समझते, वो डिनायल में है. बहुत से इदारों ने बहुत अच्छी तरह इसे कंप्लायंस भी किया है, तो बहुत मिक्स है. लेकिन अभी भी बहुत कम इदारे हैं जहां पर ये कमेटीज हैं, लेकिन जहां पर हैं जाहिर सी बात है बहुत संजीदगी पाई जाती थी, इसलिए उन्होंने ये कमेटीज बनाई. तो उस कमेटीज की परफॉर्मेंस बेहतर से बेहतर होती जाए उसके लिए भी काफी कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन अभी भी बहुत लंबा सफर तय करना बाकी है.
उज़्मा एक और बात जो यहाँ पर मुख्तलिफ ऑफिसेज में मैंडेटोरी होती है वो होती है हरेसमेंट की ट्रेनिंग्स या वर्कशॉप्स करवाई जाती हैं, और हर एक को उसे हर साल, यानी सिर्फ ये नहीं कि करवा दी, हर साल अटेंड करना ज़रूरी होता है. तो ऐसा भी कुछ वहाँ के ऑफिसेज में है कि बताया भी जाए कि हरेसमेंट क्या है?
देखिए जहाँ तक ट्रेनिंग का सवाल है तो वो तो बाय लॉ तो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन बहुत से इदारे करवाते हैं. लेकिन कानून में देखिए 3 चीजें लाजिम करार दी गई हैं. एक तो ये कि कमेटी बनाएं आप जिसमें 3 लोग हों, कम से कम 3 हो, ज्यादा हो सकते हैं, एक खातून का होना जरूरी है. दूसरा ये कि जो भी आपका कोड ऑफ कंडक्ट है प्रिवेंशन ऑफ हैरेसमेंट का, उसको ऐसे मकाम पर जहाँ ज्यादा से ज्यादा आपके एम्प्लॉयज उसे देख सकें, उसको आवेदा करना जरूरी है उस जबान में जिस जबान में वो लोग
समझते हैं.
तो और उसमें कमेटी मेंबरान के नाम लिखना भी बहुत जरूरी है. और फिर तीसरी जो रिक्वायरमेंट है वो ये कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उस पर आप असाइन करें. तो देखिए अगर आप डिस्प्ले करेंगे उसको मुख्तलिफ इदारों में सामने, तो जाहिर सी बात है हर आते जाते की नजर उस पर पड़ेगी, उनको पता चलता रहेगा. लेकिन हमारे यहाँ अभी मैं कुछ पेशे हुए एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ी मैं नाम नहीं लूंगी, उनके हेड से बात हो रही थी, तो वो तो इस चीज में डिनायल में थे, कहते जी हमारे यहाँ तो केसेस होते ही नहीं है, हमारे यहाँ तो कोई मसला ही नहीं है. तो ये बात लोगों को समझाना कि जब भी लोग साथ में काम करते हैं या केसेस या कहीं केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं तो उसका मतलब हो जा रहा बहुत बुरा है. मेरे ख्याल से जहाँ केसेस रिपोर्ट होते हैं उसका मतलब कि लोगों का कमेटी पर ज्यादा से ज्यादा एतमाद है. हमारे यहाँ खवातीन अब भी रिपोर्ट करते हुए डरती हैं, लेकिन जिस तरह हमारे इदारे में 2005 से वॉलंटरली अडॉप्ट की गई है ये कोड ऑफ कंडक्ट, 2010 में लॉ पास हुआ है, तो लड़के भी और लड़कियां भी आके कंप्लेंट्स करते हैं. लेकिन बहुत से इदारों में अभी भी बहुत पुरजोर कोशिश की जाती है कि वहां पे ये कमेटीज बनाई जाएं, लेकिन वहां पे क्योंकि आला लेवल पे यानी कि जो हेड्स हैं या जो ओनर्स हैं उनके लेवल पे ही इसको संजीदा नहीं लिया जाता, तो फिर जाहिर सी बात है उसका इफेक्ट हम कैसे देखेंगे।
तो उज्मा, कमेटी बनने के बाद और ये कानून पास होने के बाद कोई फर्क देखा आपने माहौल में, लोगों के बिहेवियर में?
बहुत फर्क आता है, जहाँ कमेटी देखे वहाँ फर्क तो आता है। अब तो वैसे भी एक हवा चली हुई है ना, अब तो लोग जो हैं वो काफी, मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी उसमें लिखा है कि एशिया में खासतौर से इंडिया पाकिस्तान में अब ज्यादा खवातीन रिपोर्ट करती हैं क्योंकि उनकी आवाज ज्यादा सुनी जाती है। लेकिन मसला क्या है, सबसे बड़ा मसला यह है कि वो सही फोरम पे रिपोर्ट नहीं कर पाती हैं। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती हैं, ठीक है आपके पास एक वे आउट है जहाँ पे आप बता सकती हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि कम से कम बोलना शुरू हुई है और सपोर्ट सिस्टम भी है, मगर होता क्या है कि जब वो सही फोरम पे जब तक पहुंचती हैं तो सोशल मीडिया पे होने की वजह से जो दूसरी पार्टीज है वो उनकी इतनी बैशिंग कर चुके होते हैं कि जब तक वो सही फोरम पे पहुंचती हैं वो थक हार चुकी होती है
और क्रेडिबिलिटी को भी वो नुकसान पहुंचा देते हैं। बिल्कुल
जी, लॉन्ग टर्म में इसका नुकसान विक्टिम को ही होता है। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो सही फोरम्स हैं चाहे वो कमेटीज हैं वो अपने आप को प्रॉपरली एडवर्टाइज नहीं करती कि जी आप आए, वो एतमाद नहीं कायम कर पाई है। और सबसे बड़ी बात, हुकूमती सतह पे जो ओम्बुड्समैन ऑफिस जो मुहतसिब के दफातर बनाए गए हैं वो अपने आप को अब तक एडवर्टाइज नहीं कर पाए, तो लोगों को पता ही नहीं होता कि हमें शिकायत दर्ज कहां
करानी है। जी इसमें मैं एक बात बोलूंगी, जो सोशल मीडिया पे जो औरतें आके बोलती हैं, आवाज उठाती हैं, सिर्फ उनकी आवाज सुनी जाती है जो जो जिनका जो कि नोन है, सेलिब्रिटीज हो या ऐसे प्लेटफॉर्म से हो, बाकी जो ऑब्वियसली जिनका जिनका जिनकी आवाज सुनी नहीं जाती वो वहां तक पहुंचती ही नहीं है, क्योंकि उनको पता है क्योंकि आवाज सुनी नहीं जाएगी अनलेस कि जिसके अगेंस्ट वो एलिगेशन लगा रहे हैं वो कोई नोन बंदा हो।
सही। और इसके अलावा तो, एक और जी बोलिए अंजलि, आप बात मुकम्मल कीजिए। एक और बात भी तो है अंजलिन, के पेरेंट्स भी फिर आपको कहते हैं कि आप जाने दीजिए बात को मोहल्ले में, बरादरी में।
प्रॉब्लम तो एक और जो मेजर प्रॉब्लम इसमें ये है कि अगर एक लड़की हरास हो रही है या कुछ हो रही है और अगर अपने माँ बाप से बात करे तो वो उनको सपोर्ट नहीं मिलता। मेरे ख्याल से जो मेजर प्रॉब्लम यहाँ जो है वो फैमिली सपोर्ट नहीं है, फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करती है। अगर कोई इंसिडेंट कोई विक्टिम हो उसका जो पोस्ट ट्रीटमेंट है, पोस्ट थेरेपी है, उसको भी फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, तो ऑब्वियसली वो यही माइंडसेट भी हमने चेंज करना है कि अगर आपको वो सपोर्ट करेज टू से नो।
जी उज्मा, क्या कह रही थी आप?
जी यही एक बहुत बड़ा मसला है कि अगर आपने कंप्लेन की, ठीक है जिन इदारों में कमेटीज हैं, इफेक्टिव हैं, वहाँ इदारों के अंदर अंदर हैंडल हो जाता है और नाम भी बाहर नहीं आता, वहीं पे लोग एतमाद करते हैं। लेकिन बहुत बड़ी तादाद ऐसी है कि जिसमें अगर लड़की ने कंप्लेन की या उसने आवाज उठाई तो उसके घर वाले ही उसको बोलते हैं कि अब आप बैठ जाए, आपको जरूरत नहीं है काम करने की, आपको पढ़ने जाने की जरूरत नहीं है। और गलतियां भी उस लड़की में ही निकाली जाती हैं कि आपने लिबास देखे इस तरह का पहना हुआ था, आप हर एक से हंस के बात कर लेती हैं तो इसलिए ये हो जाता है। तो एक प्रॉपर सेटअप, एक तो ये पेरेंट्स घर का सपोर्ट, सेकेंडली लड़की को ही ब्लेम करना, और थर्डली नो कहना सिखाना भी बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ बहुत सी सिचुएशन में ये भी होता है कि लड़की नो भी नहीं कह पाती और वो जब बात मामला बहुत ऊपर आ जाता है तो फिर वो बर्स्ट होती है और उसका नुकसान जो है वो उसको। तो एक पूरे सिस्टम को 360 डिग्री पे काम करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ, बहुत काम हुआ है, पहले से बहुत बेहतरी आई है, लेकिन अभी बहुत लंबा सफर तय करना है, अभी बहुत ज्यादा काम किए जाने की जरूरत है।
बिल्कुल, उसी का तो आगाज किया है उज्मा एंजेलिन मलिक ने, नो के लिए ही के नो कहो। होल जनरेशन
चेंज माइंडसेट।
बिल्कुल, इसलिए मैंने आपसे पूछा कि ये जो जनरेशन है जहाँ से आपने आगाज किया है कि ये जब जवान होगी, आगे बढ़ेगी और एक नई सोसाइटी जो है वो सामने आएगी, तो कितनी होपफुल हैं कि एक चेंज हमारे सामने आएगा, उसका आपने जवाब दे दिया। तो 2014 में एक केस मैं देख रही थी, मेरी नज़र से गुजरा कि कोई ज़रई ऑफिस था तो वहाँ एक सिर्फ एक खातून थी वहाँ पर, तो सारे उसको हरास करते थे मुख्तलिफ तरीकों से, तो उसने अपने ऑफिस में बात की तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ये तो एक रेगुलर वो है, लेकिन उसने अपने घर में बताया तो वो इतने ज्यादा हालांकि नहीं थे पढ़े लिखे, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को सपोर्ट किया और वो पुलिस के पास गया और 11 लोगों को सजा मिली। तो कहने का मतलब ये है कि हमें वालदैन को इन बातों पर शर्मिंदा होने की कतई जरूरत नहीं होती, बल्कि
बिल्कुल
अगर हम जो भी इंसान इस तरह की हरकत करता है अगर हम इग्नोर कर देंगे तो हम उसी को ही ताकतवर कर रहे हैं।
देखिए एक चीज एक चीज हमें समझना जरूरी है कि ये क्राइम है, ये एक जुर्म है,
एक जुर्म
हरासा करना, ठीक है। अगर आपके घर में चोरी होती है तो आप उसको छुपाते नहीं है, आप उसको बताते हैं कि हमारे घर में चोरी हुई, आप उसको रिपोर्ट करते हैं। तो जब तक हम इसको जुर्म नहीं तस्वर करेंगे, हम डिनायल में रहेंगे, तब तक हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे।
बिल्कुल। और एंजेलिन आप मुझे ये बताइए, आप तो एक ब्यूटी इंडस्ट्री में हैं।
एक और बात कहना चाहूँगी।
जी कहिए।
कि बेसिकली हमारे यहाँ एक और जो मेजर प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई किसी औरत के साथ किसी किस्म की ज्यादती होती है तो हमारे दिमाग में लोगों के माइंड सेट ये है कि औरत ने खुद अपने आप पे उसने खुद इन्वाइट किया है। ये जो माइंड सेट है इसको भी चेंज करना बहुत लाजमी है कि तुम रात को 2 बजे क्यों बाहर गई थी, तुमने स्लीवलेस क्यों पहना, तुमने आदमी से बात क्यों की। सो ये जो सारी सोच है एंड इसी वजह से औरत जो है वो आवाज उठाने से भी डरती है क्योंकि उसको
ब्लेम किया जाएगा।
ये खौफ है कि मुझे
बात कर रही हूँ। आपको पता है मैं ट्रेनिंग देती हूँ हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस के ऊपर, प्रिवेंशन ऑफ हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस के ऊपर। तो मुझे बहुत सीनियर ऑफिशियल्स, बहुत बड़े समझदार पढ़े लिखे लोग अगर लाल लिपस्टिक लगाकर आएंगी तो इसका मतलब तो फिर यही है ना कि वो दावत दे रही हैं। अब जीन्स पहनकर आएंगी तो फिर इसका मतलब तो, लेकिन अभी भी लोगों को लाल लिपस्टिक और जीन्स पे एतराज है कि कोई लड़की जीन्स पहन के आई है या उसने स्लीवलेस, तो बहुत दूर की बात है, लेकिन वो लाल लिपस्टिक और जीन्स में तो हर ट्रेनिंग में सुनते हैं। तो हमारे यहाँ तो अभी तक लोग इससे भी बाहर नहीं निकले। आप किसी से हंस के बात कर ले, एक तो लोग कंसेंशुअल इसका मतलब नहीं पता, आप किसी से हंस के बात कर ले तो उसका मतलब ये जी अगर ये इससे हंस के बात करी है तो उसका मतलब शी इज अवेलेबल टू हर कुल स्कोप। फिर कहते हैं कि जी वो तो वैसे ही हंस उसके बात करते हैं। तो जहाँ इतनी बर्दाश्त नहीं है, इतनी अवेयरनेस नहीं है, इतना टॉलरेंस नहीं है कि वो लाल लिपस्टिक लगाकर आती है तो उस पर आप एतराज करते हैं, तो फिर हैरेसमेंट की कंप्लेन का कहाँ आप, बहुत ही दूर की बात हो जाती है।
यही सवाल मैं एंजेलिन से करना चाह रही थी। एंजेलिन जी जी, कि चूंकि आप ब्यूटी इंडस्ट्री में हैं, लिबास का मुझे बताइए।
अपने बच्चों की
जी जी, एंजेलिन आवाज आ रही है आपको? जी जी एग्जैक्टली ये उज्मा वाली बात ही मैं आगे बढ़ाना चाह रही थी।
ये जो लड़कों का इतना सोचना है वो माँ बाप ही बदल सकते हैं। माँ बाप ही बेटे को सिखा सकते हैं कि यू नो कि औरत अवेलेबल नहीं है। सो That training starts from childhood. क्योंकि हम बच्चों को माँ यही बोलती है कि चलो चलो तुम तो लड़के हो, तुमने कर लिया, यू आर अ बॉय, एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन हाउ द फादर ट्रीट्स द मदर। इफ अ बॉय सीज द फादर ट्रीटिंग द मदर विद रिस्पेक्ट, देन ही विल ऑल्सो लर्न टू ट्रीट वुमन विद रिस्पेक्ट।
एक और बात आप दोनों मुझे बताइए कि क्या पूरे की पूरी जिम्मेदारी इज्जत की, बरादरी की इज्जत की, कम्युनिटी की इज्जत की, घर की इज्जत की, नस्लों की इज्जत की, सारी जिम्मेदारी सिर्फ औरत पर डाल देना सही है? मर्द उस इज्जत में
एक रंग में जवाब दूं तो नहीं,
एग्जैक्टली
बिल्कुल भी नहीं।
तो मतलब घर की इज्जत सिर्फ लड़की ही लेकर क्यों चलती है आगे, लड़कों पे ये क्यों लागू नहीं होता कि वो भी इज्जत।
जिस तरह से एंट्रीना ने बोला ना कि ये अर्ली चाइल्डहुड का मसला है, ठीक है, हम अपने घर में, हम सबके घरों में हमने देखा है, बहुत से इलाकों में देखती हूँ कि जी घर में जब बातें हो रही होती हैं बैठ के तो वो दूसरी औरतों के कपड़ों पर ही बातें हो रही होती हैं कि जी देखो ना फलानी किस तरह के कपड़े पहनकर आ गई थी, उसने शादी में लाल रंग का जोड़ा पहन लिया था या उसका ब्लाउज कितना छोटा था या उसके कपड़े बुंदे ऐसे पहने हुए थे। ये जनरल बातें हमारे यहाँ बहुत से घरों में होती हैं। जब उन्हीं घरों में बच्चे सुन रहे होते हैं, हम समझते हैं बच्चे सुनते नहीं है, वो सब सुन रहे होते हैं। फिर लड़के ने किसी को बोल दिया तो लड़का है बोल देगा, लड़की को बोलते हैं कि जी तुम चुप करके बैठो, तुम्हारा काम है खामोश रहना। तो ये आपने बचपन से उनकी साइकी, उनका माइंडसेट बना दिया और वो एक घर का माइंडसेट जो है वो पूरी सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करता है क्योंकि हर इंडिविजुअल घर के यही माइंडसेट होते हैं मेजॉरिटी। हम और आप शायद उस माहौल से निकल गए हैं, हमारे घरों में वो माहौल था नहीं, तो इसलिए हमारी अवेयरनेस हमारे घर के लड़कों की भी ज्यादा है। लेकिन अभी भी बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जहाँ पे यही बिहेवियर घर में अपनाए जाते हैं और जब उनके बच्चे बड़े होते हैं तो उनके माइंडसेट में भी यही बात,
यही चीज आ जाती है। एग्जैक्टली। टाइम बहुत कम रह गया है उसमें, पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपके ख्याल में मुझे एक आखिरी सवाल के तौर पर ये बताइए कि हम इसको सोसाइटी, पेरेंट्स और हम सब की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है?
देखिए हमारी और आपकी तो बहसियत मीडिया जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आई थिंक हम सब पूरी कोशिश कर रहे हैं, हम हर फोरम पे आवाज उठाते हैं। आप ये प्रोग्राम कर रही हैं, एंजेलिना ने अपना काम शुरू किया है, मैं ट्रेनिंग देती हूँ वॉलंटियरली, तो जितना हम अपने आस पास फैला सकते हैं फैलाते हैं। और बाकी तमाम लोगों को आई थिंक अपने घर से ये बात शुरू करनी है कि अपने बेटों और बेटियों में फर्क खत्म कर दें, जो इख्तियार आपके बेटे को है वही आपकी बेटी को भी है, तो फिर मेरे ख्याल से ये मसला काफी हद तक,
और इज्जत पे जितना बट्टा जो है वो बेटी की किसी भी एक्ट की वजह से लगता है, बेटे के एक्ट की वजह से भी लगता है। उसको ये बताना भी जरूरी है.
बिल्कुल
जी. एंजेलिन आप अपनी इस इनकार करो इसके बारे में. आप जाने से पहले हमारे सुनने वालों को मजीद कुछ बताइए.
जी आई थिंक मैंने काफी इसको इन डेप्थ आपको बताया है
एग्जैक्टली
क्या है. एंड बेसिकली ये सिर्फ इट्स नॉट अ मूवमेंट ओनली फॉर वुमेन, इट्स अ मूवमेंट फॉर मेन एज वेल. एंड आई थिंक वो सारी जो हमने भी जो बात की है कि आपने ये कंडीशनिंग और माइंडसेट लड़कों की भी और लड़कियों की भी बचपन से ही आपने उनको एजुकेट करना है. एंड
बहुत
ये हम
बिल्कुल टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया. बहुत ही अच्छी गुफ्तगू रही, बड़ी मालूमाती. बहुत शुक्रिया अपने तमाम मेहमानों का. सादिया असद, असफर इमाम, उज़्मा और एंजेलिन को इजाज़त दीजिए. अल्लाह निगेबान.
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नज़र पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौक़िफ़ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते.
अब आपके हाथ में.
पढ़िए, देखिए, सुनिए, सेव कीजिए, फॉलो कीजिए.
दूर जाने की जरूरत नहीं. VOA उर्दू की अहम तरीन खबरें और ब्रेकिंग न्यूज की लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस अब आपकी हथेली में हैं.
आईफोन के लिए खसूसी तौर पर तैयार की गई उर्दू VOA की खसूसी ऐप डाउनलोड कीजिए जो अब एप स्टोर पर भी दस्तयाब है.
VOA उर्दू अब आपके हाथ में.
VOA उर्दू अब आपके हाथ में. पढ़िए, देखिए, सुनिए, सेव कीजिए, फॉलो कीजिए. दूर जाने की जरूरत नहीं. VOA उर्दू की अहम तरीन खबरें और ब्रेकिंग न्यूज की लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस अब आपकी हथेली में हैं. आईफोन के लिए खसूसी तौर पर तैयार की गई उर्दू VOA की खसूसी ऐप डाउनलोड कीजिए जो ऐप स्टोर पर भी दस्तियाब है. VOA उर्दू अब आपके हाथ में.
शिमाली कोरिया के लीडर किम जोंग उन अपना चीन का दौरा मुकम्मल करके वतन रवाना हो गए हैं. उनके दौरे चीन के बारे में शिमाली कोरिया और चीन दोनों ने कोई तफसीलात जारी नहीं की हैं. ये दौरा किम और सदर ट्रंप के दरमियान सरबराह मुलाकात के मुजवजा दूसरे दौर की तैयारियों के तनाजुर में किया गया है. इस बारे में वॉइस ऑफ अमेरिका के विलियम गैलो की रिपोर्ट के साथ शब्बीर चिलानी.
ये एक साल के दौरान किम जोंग उन का चौथा दौरा चीन था. इससे ये बात वाजे होती है कि बैन अल-अक़वामी पाबंदियों के बावजूद किम तनहा नहीं हैं. उनके गुज़श्ता दौरा चीन की तरह ये दौरा भी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुजवजा सरबराह मुलाकात के तनाजुर में देखा जा रहा है. हेरिटेज फाउंडेशन के ब्रूस क्लिंगनर कहते हैं,
आई थिंक ही इज लुकिंग फॉर रीअश्योरेंस दैट चाइना इज इन हिज कॉर्नर, दैट दे हैव हिज बैक.
मेरे ख्याल में वो चीन से ये यकीन दहानी हासिल करना चाहते हैं कि वो उनकी तरफ है और उन्हें चीन की हिमायत हासिल रहेगी. यूं जब वो सदर ट्रंप के साथ मुलाकात के लिए जाएं, तो वो एक मजबूत पोजीशन के साथ वहां जाना चाहते हैं. किम की साले नौ की तकरीर से भी कुछ ऐसा ही तासर मिलता है जिसमें किम ने धमकी दी थी कि अमरीका से मुजाकरात की नाकामी की सूरत में आइंदा का लाहे अमल मुख्तलिफ होगा. चीन के दौरे से शायद किम इस धमकी को मज़ीद मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं. कार्नेगी इंस्टीट्यूट के डगलस पॉल कहते हैं,
I think it shows that he is not alone, that he has diplomatic.
मेरे ख्याल में इससे जाहिर होता है कि किम तनहा नहीं हैं और उन्हें चीन की सिफारती हिमायत हासिल है और वो तनहा नहीं किए जा सकते. मैं समझता हूं कि उनका बुनियादी मकसद यही था. गुज़श्ता बरस किम और सदर ट्रंप की पहली सरबराह मुलाकात के बाद से इस बात का तासर मिलता है कि अमरीका और शुमाली कोरिया में तातुल की कैफियत पैदा हो गई है. अमरीका मुतालबा कर रहा है कि शुमाली कोरिया अपने जौहरी हथियार तर्क कर दे, जबकि शुमाली कोरिया का इसरार है कि ऐसे इकदाम से कबल अमरीका पाबंदियाँ नरम करे या फिर कोरियाई जंग के रस्मी तौर पर खात्मे का ऐलान करे. ताहम सदर ट्रंप का कहना है कि बातचीत तसल्ली बख्श अंदाज में आगे बढ़ रही है. वो कहते हैं,
नॉर्थ कोरिया, वी आर डूइंग वेरी वेल, एंड अगेन नो रॉकेट.
शुमाली कोरिया, हम मामलात बहुत अच्छी तरह तय कर रहे हैं और एक बार फिर कोई रॉकेट नहीं चलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं. ताहम महकमा खारजा के साबिक अहलकार रॉबर्ट मैनिंग की तरह बहुत से तजिया कार अच्छी उम्मीद नहीं रखते. Robert Manning का कहना है,
I think our leverage is diminishing and I think the Kim visit to China is the latest.
मेरे ख्याल में हमारा असर रसूख कम हो रहा है और मेरे ख्याल में किम का दौरा चीन इसकी एक मिसाल है. किम जोंग उन चीन के दौरे से दुनिया को ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर अमेरिका शुमाली कोरिया को वो सब कुछ देने के लिए तैयार नहीं भी होता जिसका वो मुतालबा कर रहा है तो शुमाली कोरिया के पास दीगर ऑप्शंस मौजूद हैं. शब्बीर जिलानी, वॉइस ऑफ अमेरिका.
पेश खिदमत है प्रोग्राम हरदम रवा है जिंदगी. पेशकश यास्मीन जमील. ताज़ा तरीन खबरों, खसूसी फीचर्स, टीवी और रेडियो प्रोग्राम देखने और सुनने के लिए विजिट कीजिए www.voanews.com/urdu.